नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान राम की कथा को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने से पहले भगवान राम को प्रणाम करेंगे। आप सब दोहराइए रामम रामानुजम सीता भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनम च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम श्रीमती सीता देवी भगवान के भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न और उनके मित्र श्री सुग्रीव जी तथा उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री रामचंद्र जी के जन्म के आगे की कथाओं का, फिर कैसे विश्वामित्र मुनि आए, विश्वामित्र मुनि उनको लेकर जाते हैं अपने आश्रम सिद्धाश्रम, रास्ते में ताटका का वध करते हैं भगवान पहली असुर। ताटका का वध हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि ताटका ये अज्ञान को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो भगवान ने उसको मारने के लिए तीर चलाया जो उसके हृदय में लगा और भगवान के द्वारा इस छोड़े गए तीर से फिर उसका वध हुआ और उसने अपने मूल स्वरूप को प्राप्त किया, अर्थात बहुत सुंदर स्वरूप उसको प्राप्त हुआ। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हम भी अज्ञान से परे जाते हैं तो सुंदरता, सही सुंदरता को प्राप्त करते हैं, और यह ज्ञान कैसे जा सकता है जब भगवान के द्वारा तीर हृदय में लगता है, अर्थात भगवान के द्वारा दिए गया ज्ञान भगवत गीता भागवत वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो ऐसे ताटका का वध किया। ताटका जब तक भगवान के द्वारा ये तीर हृदय में नहीं लगा था तब तक भगवान पर आक्रमण कर रही थी। कल हमने सुना बहुत बड़े बड़े पर्वत इत्यादि सब फेंकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये तीर लगा और उसने अपने शरीर को छोड़ा और सुंदर शरीर को प्राप्त किया, उसने भगवान की प्रदक्षिणा की। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ताटका जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, जब तक हमारे हृदय में अज्ञान रहता है हम कभी भी भगवान को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या कहना चाहिए कि हम उनके विरोधी रहते हैं जैसे ताटका थी। लेकिन जब उनके द्वारा, जैसे भगवान के द्वारा छोड़ा गया तीर ताटका के हृदय में गया, जब उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश करता है तब फिर हम भगवान को समझ सकते हैं और फिर हम समर्पण करते हैं भगवान को। तो हमारा समर्पण ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, भावुकता के आधार पर नहीं। तो ये हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि ताटका का वध किया और फिर गुरु के आदेश का पालन रामचंद्र जी ने किया, चिंता नहीं की कि क्या समाज आने वाला इतिहास उनको क्या कहेगा, लेकिन उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे जब आगे चलकर विश्वामित्र मुनि स्थान पर पहुंचते हैं, यज्ञ की दीक्षा ले लेते हैं और फिर श्री रामचंद्र जी खड़े होकर रक्षा करते हैं यज्ञ की। थोड़ी बहुत चर्चा दीक्षा के विषय में हुई, गुरु के विषय में हुई, कई बार भक्तों के मन में एक प्रश्न आता है कि कैसे पता चले कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हैं या नहीं, विशेष करके आज की स्थिति में जहां हम लोग इस्कॉन में हैं तो गुरु से मिलना ही कठिन हो जाता है, और फिर जब मिलते भी हैं तो थोड़े समय के लिए, और गुरु कहते ठीक है जब चल रहा है ठीक ठाक सब कुछ ठीक है हरे कृष्णा। तो हमें कैसे पता चले कि गुरु हमसे प्रसन्न हैं या नहीं है हमारे कार्यों से, तो ये प्रश्न भक्तों के मन में आता है। इसका उत्तर बड़ा सरल है, हमें ये जानना चाहिए कि गुरु किस चीज से प्रसन्न होते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज ये नहीं समझना चाहिए कि जब तक हम जाकर उनको बताएंगे नहीं कि हमने ये कार्य किए हैं तब तक गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, ये साधारण भौतिक धारणा है। जैसे इस जगत में आप कुछ करते हो तो आपको जाकर अपने अधिकारी को बताना होता है, देखो मैंने ये किया है, तब अधिकारी आपकी प्रशंसा करता है आपसे प्रसन्न होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक जगत में गुरु के साथ संबंध शिष्य का ऐसा नहीं है कि उसे जाना पड़े और बताना पड़े कि हाँ गुरुदेव मैंने इतना इतना कार्य किया, मैंने इतने भक्त बनाए, मैंने इतना प्रचार किया और तब गुरु प्रसन्न होंगे। गुरु प्रसन्न होते हैं जब हम उनके बताई हुई शिक्षाओं को गंभीरता से पालन करते हैं। अगर हम गुरु के बताई हुई शिक्षाओं को जीवन में गंभीरता से लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जान लीजिए गुरु प्रसन्न हैं। दूसरा प्रमाण, अगर हम भक्ति में हरि नाम के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति रुचि हमारी बढ़ रही है, इसका अर्थ है गुरु हमसे प्रसन्न है। क्योंकि हमारी रुचि बढ़ नहीं सकती जब तक गुरु की कृपा ना हो, और गुरु की कृपा हो रही है मतलब गुरु प्रसन्न है। तो हमें यह देखना है कि क्या हमारी रुचि बढ़ रही है, क्योंकि हर गुरु यही चाहता है, वो चाहे किसी भी स्थान से हो, अगर वो प्रामाणिक गुरु है तो वो एक ही चीज चाहते हैं, हम कृष्ण की ओर जाएं, हमारी कृष्ण भक्ति में रुचि बढ़े। अगर हमारी रुचि बढ़ रही है तो जान लीजिए गुरु हमसे प्रसन्न है। तीसरी चीज, अगर अन्य भक्त हमारे अधिकारी हमसे प्रसन्न हैं तो मान लेना चाहिए कि गुरु प्रसन्न है। तो इसीलिए हमें ये आवश्यकता नहीं है ये जानने की कि गुरु को हमारे कार्य पता चले या ना चले। हमने इतना बड़ा कार्य कर दिया, हमने यहाँ मंदिर बना दिया, हमने यहाँ भक्तों को इतने भक्त बना दिए, इतना प्रचार किया, गुरु को पता चला कि नहीं? गुरु को सब पता है। उससे ज्यादा प्रसन्न गुरु तब होते हैं जब आपने व्यक्तिगत प्रगति की या नहीं की। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण, हमारे संस्था के एक सन्यासी थे भक्ति तीर्थ महाराज, अब तो वो नहीं है इस धराधाम पर, उन्होंने प्रभुपाद को अपनी एक ऑफरिंग लिखी थी व्यास पूजा पर, और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने प्रकट की, बहुत विस्तार से थी। सार में ऐसा था कि उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि प्रभुपाद मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि आप आए हैं, आप मेरी तरफ आ रहे हैं, और जैसे ही आप आए तो मैंने आपको बताना शुरू किया कि प्रभुपाद हमने इतना कुछ किया, हमने गीता नगरी बनाई है, हमने इतने बुक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हमने ये किया है। प्रभुपाद आपने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुझसे पूछा व्हाट अबाउट लस्ट, काम वासना का क्या हुआ? और अचानक मैंने प्रभुपाद उस पर ध्यान नहीं दे के फिर से आपको बताया, प्रभुपाद मैंने यहां प्रचार किया, अफ्रीका में किया, यहां किया, अमेरिका में इतना बड़ा कर लिया। आपने फिर से मुझसे पूछा व्हाट अबाउट लस्ट, काम का क्या हुआ, काम वासना का? और प्रभुपाद मैं उत्तर नहीं दे पाया और आप घूम गए वापस, आप चल दिए और आपने मुझसे कहा यू आर नॉट रेडी येट, आप अभी तैयार नहीं हैं। अर्थात वो बता रहे थे कि प्रभुपाद आप मुझे लेने आए थे लेकिन मैं तैयार नहीं था, हालांकि मैंने इतना किया, बड़े प्रचार किए, शिष्य बनाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर, गीता नगरी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैंने अपनी साधना को महत्व नहीं दिया या अपने अंदर जो दोष हैं उसको मैंने दूर नहीं किया, प्रभुपाद अब वापस चले गए कि यू आर नॉट रेडी येट। ये बहुत महत्वपूर्ण हम सब के लिए है। गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं यहां दिखला रहे हैं। हो सकता था कि अगर गुरु केवल इतने बड़े बड़े कार्यों से प्रसन्न होते तो प्रभुपाद कहते बहुत अच्छा है, कम ऑन आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉड हेड, अभी ले चलता हूं तुम्हें भगवान के धाम। लेकिन प्रभुपाद ने कहा यू आर नॉट रेडी येट, ऐसा भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा लिखा। तो इसका अर्थ क्या है, इससे हमें वो क्या सिखला रहे हैं कि हाँ हमें सेवाएं करनी है निश्चित, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी हमें अपनी भक्ति में प्रगति करनी है। तो इसीलिए गुरु प्रसन्न है या नहीं, भक्ति में रुचि आई या नहीं, हम कितना संघर्ष कर रहे हैं उनके उपदेशों का पालन का। और कभी कभी कोई भक्त कहता है मुझे मेरे गुरु महाराज ने कोई आदेश दिया ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं मिला मुझे। गुरु का इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है, 16 माला जप करो ध्यान पूर्वक, ये गुरु का इंस्ट्रक्शन है। आपको सुनने की जरूरत नहीं गुरु से कि गुरु आपको व्यक्तिगत कहें 16 माला करो, उन्होंने कह दिया दीक्षा के समय आपको 16 माला जप करो, 4 नियम पालन कड़ाई से करो, कृष्ण की सेवा भक्तों के साथ में अच्छी तरह से संग में रहना, ये गुरु के आदेश है। सहयोग से रहो, 16 माला जप ध्यान पूर्वक करो, 4 नियम का पालन कड़ाई से करो, भक्तों में प्रेम उत्पन्न करो और कृष्ण की सेवा को अपने जीवन का आधार बनाओ, यही उपदेश है हर गुरु के, या यही आशाएं हैं हर गुरु की हमसे। क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? और अगर उसको पूरा करने की ओर हम उस ओर बढ़ रहे हैं, गुरु हमसे प्रसन्न है। तो इसीलिए ये हमारे लिए प्रमाण है। तो ऐसे भगवान फिर आगे सिद्धाश्रम में उनके यज्ञ की रक्षा करते रहे। और फिर जब सिद्धाश्रम में ये मारीच और सुबाहु को मारा, हम लोगों ने कल चर्चा की थी, सुबाहु को मारने का अर्थ है कि दीक्षा से पहले या भक्ति में आने से पहले हमने जितने भी पाप किए थे उनको मार देते हैं और मारीच को दूर भगाते, मतलब आने वाले भी आप जो करने वाले हैं उनको दूर रखते हैं। तो ऐसे ये चर्चा हुई। तो अब जब यज्ञ समाप्त हो गया, रामचंद्र जी अगले दिन गए, प्रणाम किया, क्या आज्ञा है? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अब मिथिला जा रहा हूं, वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और मेरी इच्छा है, विश्वामित्र मुनि ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम वहां मेरे साथ चलो और वहां एक विशाल धनुष है, बहुत विशाल धनुष है, साधारण मनुष्य तो क्या देवता तक उसको उठा नहीं पाते हैं, मैं चाहता हूं तुम उसको देखो, उस धनुष को देखो। क्या वो तो तोड़ना ही था, लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि कह रहे थे देख लो, उनको पता था क्या होगा। तो रामचंद्र जी तैयार हो गए और राम और लक्ष्मण दोनों चले। तो उस समय सारे ऋषि मुनि, जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे कि राजा जब यज्ञ किया करते थे तो सारे ऋषि मुनि आया करते थे, या ऐसा कहना चाहिए कि राजा यज्ञ ही इसीलिए किया करते थे कि ऋषि मुनि आए मेरे राज्य में। भक्तों का राज्य में आना, साधुओं का, संतों का राज्य में आना, ये राजा के लिए बड़े मान सम्मान की बात हुआ करती थी। जिस राज्य में साधु नहीं जाए, ऋषि मुनि नहीं जाए, वहां तो अकाल पड़ जाता है। ये हम लोग सुन चुके हैं महाराज रोमपाद के प्रसंग में। तो इसीलिए साधुओं का बड़ा महत्व है। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के वो लिखते हैं कि जिस दिन साधु संत मेरे घर में आ रहे हैं वो मेरे लिए दशहरा दिवाली है। क्यों? क्योंकि उनका आना ये उनके आनंद के लिए, उनके भले के लिए नहीं है। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर आते हैं नामकरण करने के लिए, तो नंद महाराज गर्ग मुनि से कहते हैं कि आप जैसे साधु हमारे जैसे गृहस्थों के घर में इसलिए नहीं आते हैं कि उनको कुछ चाहिए या उद्धार होना है, आप हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। तो इसलिए जहां साधु हैं, जहां संत हैं, वहां धर्म है, वहां आनंद है। तो रामचंद्र जी के साथ इतने सारे सब ऋषि मुनि चल रहे हैं अब, और हर स्थान पर फिर भगवान प्रश्न करते जाएंगे। तो रात्रि का समय हो गया, चलते चलते एक बहुत सुंदर रमणीय स्थान था, वहां पहुंचे। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि अब हम यहीं पर विश्राम करेंगे रात्रि को और फिर कल चलेंगे सुबह। तो उस स्थान पर सब विश्राम करने लगे। उस स्थान का नाम था शोणभद्र, बहुत सुंदर स्थान था। तो रामचंद्र जी ने प्रश्न कर लिया कि ये किसका स्थान है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर उसका इतिहास, जो बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, हम सबको भक्ति में आगे बढ़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये इतिहास बतलाता है, इसलिए इस इतिहास को थोड़ा सा संक्षेप में कहना चाहते हैं। तो ये नगरी थी कुशनाभ की। कुशनाभ ब्रह्मा जी के वंशज हैं। तो कुशनाभ की नगरी थी, उनकी 100 पुत्रियां थी, बहुत सुंदर, और युवतियां थीं, विवाह योग्य थीं। तो एक समय वायु अर्थात वायु देव ने उन पुत्रियों को देखा तो बड़े आकर्षित हो गए उनकी ओर। तो वे सीधे उनके पास चले गए और उन्होंने जाकर कहा, वो वायुदेव हैं, उन्होंने कहा ऐसे मैं वायु हूं, तो आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो उस समय जो पुत्रियां थी उन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिया। उन्होंने कहा वायु से कि आपसे हम विवाह, आप ऐसे आकर हमसे विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं, हम अगर चाहें तो अभी, भले ही आप देवता हैं, हम अभी आपको श्राप दे सकती हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी तपस्या का बल चला जाएगा। हम उसी को स्वीकार करेंगे जिससे हमारे पिता हमारा विवाह करेंगे। कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने, सही बात है, नियम ये था। तो देखिए दो महत्वपूर्ण बातें यहां, एक तपस्या, दूसरी सभ्यता। तपस्या का बल इतना था कि वायु को वो श्राप दे सकती थी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं क्योंकि उससे तपस्या का बल चला जाएगा। अर्थात तपस्या का उद्देश्य किसी का नाश करना नहीं होता, तपस्या का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सभ्यता। उन्होंने कहा जिससे हमारे पिता कहेंगे उनसे हम विवाह करेंगे, आपको चाहिए आप जाइए हमारे पिता के पास। तो वायुदेव नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने कहा कि आप अपने सौंदर्य पर बड़ा घमंड करती हैं, तो अभी आपके सौंदर्य को ही बिगाड़ देता हूं। तो वायु तो सब जगह है, शरीर में भी है, तो वायु ने शरीर के अंदर इस तरह से विकार उत्पन्न कर दिए कि उनका जो शरीर था वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इतनी सुंदर थी सब, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। किस लिए? कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपको विवाह करना है तो हमारे पिताजी के पास जाइए। ये प्रथा थी पहले, आज भी 50-100 साल पहले तक तो ये थी, आजकल अब ये धीरे धीरे समाप्त तो हो रही है। कि और आगे आने वाले समय में जो आज जो भी भक्त हैं उनके जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाएंगे तो उनको ये बताना पड़ेगा, तो बच्चे उनसे पूछेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता था किसी काल में कि लोग माँ बाप से पूछकर विवाह करते थे। तो ये आने वाला समय बहुत जल्दी आने वाला है, ये आ गया होगा, हम लोग को तो पता नहीं, हम इसके बाहर जानते नहीं क्या हो रहा है, तो हो भी सकता है आ भी गया हो। तो उस समय फिर उन्होंने उनको बड़ा विकृत उनका रूप कर दिया, और ऐसे में वो अपने पिता के पास गई। तो पिता ने देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, क्या हुआ, पूछा पुत्रियों को, तो उन्होंने सब बताया। तो उस समय पिता ने उनका गुणगान किया, पिता ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने इतना किया तब भी तुमने कुछ किया नहीं, उसे क्षमा कर दिया। तो उस समय जो राजा कुशनाभ थे उन्होंने क्षमा करने की क्षमता पर गुणगान किया, और ये हम कह रहे थे भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्षमा करना। राजा कुशनाभ कहते हैं अपनी पुत्रियों से कि क्षमा ही सच्चा धर्म है, और क्षमा ही ये सच्चा आभूषण है एक व्यक्ति के लिए, एक सभ्य व्यक्ति के लिए। तो क्षमा ये सच्चा आभूषण है, सच्चा धर्म है, क्षमा से ही शांति आती है, कैसे शांति आती है, दो लोग लड़ते क्यों हैं, इसने एक से कुछ कह दिया, दूसरे ने क्षमा नहीं किया, बस अहंकार हो गया, झगड़ा हो गया। हम लोग बहुत अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ताटका का वध जब तक नहीं करेंगे हम अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते रहेंगे। हम ये सोचते हैं कि अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो कितना बड़ा अपमान है मेरा, क्यों, क्योंकि मैं बहुत श्रेष्ठ आदमी हूं। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। हम लोग यही सोचते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। आप पूछ लीजिए किसी भी व्यक्ति को, जब सुबह सुबह शीशे में शक्ल देखते हैं, हर कोई देखता है, तो जब सुबह सुबह दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं हर कोई, क्या सोचते हैं? आप लोगों से नहीं पूछना चाहते हैं, आप सब ब्रह्मचारी हैं तो आप लोगों से क्या पूछें, लेकिन साधारणता बाहर जो लोग बैठे देख रहे हैं घरों में, उनके लिए प्रश्न है। चेहरा देखते हैं दर्पण में तो क्या विचार आता है? अच्छा आप लोग कोई उत्तर दीजिए कि क्या आता होगा उनके मन। हमारे यहाँ तो वो इतना छोटा सा, वो क्या बोलते, बड़ा है यहाँ पर ना, वैसे मिरर बड़ा है हमारे पास, इतना छोटा दिखाई नहीं देता है। हाँ तो देखते होंगे तो क्या विचार आता होगा बताइए। हम सुंदर हैं, है ना, आज ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, राइट। कभी किसी को विचार आता है शीशा देखते हुए, कितना पापी आदमी है ये? कभी आता है पापी दुराचारी? नहीं, हम सब श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है। तो ये हमारा अहंकार है, तो इसीलिए हम क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन राजा कृष्णाप कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है, हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। और यही बात जमदाग्नि ऋषि ने परशुराम जी को समझाई। परशुराम जी की कथा आगे आएगी तब विस्तार से उस कथा को कहेंगे, लेकिन सार में परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन भी उसको कहते हैं क्योंकि उसकी सहस्त्र बाहु थी। वो बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि रावण को बंदी बना लिया था उसने। ये कथा आएगी जब रामचंद्र जी वापस आ जाते हैं, राज्य करने लगते हैं, तब वो ये प्रश्न पूछते हैं ऋषि मुनियों से कि क्या रावण को वश में करने वाला कोई नहीं था? तो उस समय ये लोग कथा कहते हैं कि नहीं, कार्तवीर अर्जुन ने किया था। क्या किया था कार्तवीर अर्जुन? वो आनंद ले रहा था नदी में, तो उस समय रावण हर जगह जा रहा था और हर जगह जाके चुनौती देता था, भाई तुम्हारे राजा को बोलो मुझसे युद्ध करे, नहीं तो मेरा दास बने। तो कार्तवीर अर्जुन के वहां भी आए। उस समय कार्तवीर अर्जुन अपनी रानियों के साथ नदी में खेल रहा था, आखेट कर रहा था। तो उस समय उनके राज्य में पहुंचे, रावण ने चुनौती दी, बुलाओ तुम्हारे राजा को, या तो मुझसे युद्ध करे या फिर अपनी हार स्वीकार कर ले। तो जिसका राजा शक्तिशाली होता है उसके मंत्री भी बड़े निर्भय रहते हैं। उसके मंत्रियों ने कहा कि देखो अभी टाइम नहीं है, हमारे राजा बिजी हैं, बाद में आना। रावण को कहा, रावण को क्रोध आ गया। खैर उस समय उसको पूजा करने का समय था, शिवलिंग की पूजा करता था, तो नदी के वही सी नदी के तट पर गया, तो उसने पूजा करनी प्रारंभ की। और जब पूजा कर रहा था तो देखा कि पानी बढ़ रहा है, नदी का बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वहां तक आ रहा है शिवलिंग के पास। तो रावण ने अपने लोगों को देखा, देखो क्या हो रहा है। तो वो लोग ने जाकर देखा आगे, तो सहस्रार्जुन अपनी पत्नियों के साथ खेल कर रहा था और खेल खेल में उसने अपनी बाहों से नदी का जल रोक दिया था। और क्योंकि उसने जल रोक दिया तो सारा पीछे बढ़ रहा था, मतलब इतना शक्तिशाली था कि नदी का जल रोक दिया। तो फिर जल बढ़ रहा था पीछे, बढ़ते बढ़ते रावण का जो पूजा हो रही थी उसमें सब जल आ गया, रावण पूजा नहीं कर पाया। तो बड़े क्रोध में आ गया, उठ गया रावण, अभी तक तो अपने मंत्रियों को कहा था, अब उठ गया। तो फिर आया और उसने चुनौती दी। वो अंदर थे पानी में, सहस्रार्जुन पत्नियों के साथ आनंद ले रहे थे, और रावण ने चुनौती दी, मैं रावण, त्रिलोकेश्वर रावण, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, मेरी पूजा को तुमने समाप्त कर दिया, बाहर आओ, अभी तुमसे युद्ध करूंगा। तो कार्तवीर अर्जुन ने देखा अच्छा रावण है, पत्नियों को बोला जरा थोड़ा रुकना, मैं आता हूं, जाना नहीं। इतना विश्वास था उसको, बोला इधर ही रुको, आता हूं मैं अभी। उनकी पत्नियां वहीं थी, गए युद्ध किया, रावण को बंदी बनाया, मिनिस्टर्स को बोला ले जाओ उसको, अरेस्ट कर लो अंदर, और फिर आ गए अपना आनंद लेने के लिए। इतने शक्तिशाली थे, एक ही जगह रावण बंदी बना। बाली ने तो बंदी नहीं बनाया था, इन्होंने तो जेल में डाल दिया था उसको, कारागृह में, भाग नहीं सका रावण, इतने शक्तिशाली थे। बाद में पुलत्स्य ऋषि को आना पड़ा, तब छोड़ा इन्होंने। तो उस समय उनकी हत्या कर दी परशुराम जी ने। जब हत्या कर वापस आए तो जमदाग्नि ऋषि ने उनको कहा कि बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत गलत किया, क्षमा करना सीखना चाहिए, जाओ पश्चाताप करो, एक वर्ष तक भ्रमण करो तीर्थ स्थलों का। इसीलिए भेज दिया था परशुराम जी को कि तुमने बहुत गलत किया, हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग देखते हैं जगाई मधाई, जगाई मधाई ने इतने पाप किए, इतने पाप किए, लेकिन महाप्रभु जब उनको मारने गए तो नित्यानंद प्रभु ने क्षमा किया। उन नित्यानंद प्रभु ने जिन्होंने मार खाई, मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है, इसीलिए कहते हैं नित्यानंद प्रभु के लिए कि मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है। कौन है ऐसा दयालु जो मार खाकर भी प्रेम देने के लिए तैयार है? ये महाप्रभु का आंदोलन है क्षमा करना। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको पीटा जा रहा है, 3-4-5 बाजार होने के बाद मारने वाले थक गए, उन्होंने कहा आप हैं कौन, आपके अंदर क्या शक्ति है, 3 बाजारों से ज्यादा कोई टिका नहीं हमारे सामने और आप अभी भी जीवित हैं। 22 बाजारों में भी हो गया और उस समय भी हरिदास ठाकुर ने उनको क्षमा किया, इनको क्षमा कर दीजिए ये नहीं जानते, और भगवान ने क्षमा किया। ऐसा वर्णन है कि भगवान ने अपना सुदर्शन भेज दिया था इनको मारने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने रोक दिया। तो ये क्षमा भक्त का आभूषण है। गुणों से भक्त सुंदर बनता है। भक्त को कोई सोने की चेन, सोने का हार, अंगूठियां पहनने की आवश्यकता नहीं है, गुणों का हार पहनी है, क्षमा का हार पहनी है, तब देखिए सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी। साधव साधु भूषण, साधुओं का आभूषण है साधुत्व, अर्थात अच्छे गुण। तो इसलिए क्षमा करना हमें सीखना चाहिए। भक्ति का मार्ग यही है कि हम नकारात्मक भावनाओं से हटकर सकारात्मक भावनाओं की ओर बढ़ें, तब हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो फिर ऐसे वहां की लीला का वर्णन किया, और फिर क्योंकि वहां जहां बैठे थे नदी के तट पर, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने प्रश्न किया कि हम गंगा के अवतरण की कथा सुनना चाहते हैं। तो विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के अवतरण की कथा को कहा। बहुत विस्तार से उन्होंने कहा, रामायण में बड़े विस्तार से इसको कहा गया है। जितना समय बाकी है उतने समय में हम इस गंगा के महत्व को और गंगा के अवतरण को कहने का प्रयास करेंगे। गंगा का गुणगान शास्त्रों में हुआ है। भागवत कहता है निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम चित्तो अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। गुणगान करते हैं कि निम्न गानाम बहने वालों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण अच्युत, और वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम पुराणों में श्रीमद् भागवतम। तो ये गुणगान हुआ है गंगा का। गंगा का एक नाम है विष्णुपदी, जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। इस जगत में वो कैसे आई और पृथ्वी पर कैसे आई? वैसे गंगा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि गंगा गोलोक में एक गोपी है। गंगा ही नहीं, यमुना, सरस्वती, ये गोलोक में गोपियां हैं, तो गंगा भी एक गोपी है। और गंगा का स्वरूप ये राधा और कृष्ण के तरल रूप माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि एक समय जब शिवजी नृत्य कर रहे थे तो राधा और कृष्ण दोनों के शरीर पिघलने लगे उनके भावों को देखकर, और वो गंगा बने। चैतन्य मंगल में भी लोचनदास ठाकुर ने इसको लिखा है कि गंगा के तट पर चैतन्य महाप्रभु को गंगा के बारे में कथा सुनाई गई। और वो कथा क्या थी? वो कथा ये थी कि एक समय शिवजी संकीर्तन कर रहे थे। शिवजी का सही आनंद संकीर्तन में है, तो शिवजी संकीर्तन कर रहे हैं, अभय भाव विभोर हो गए, बड़ी तेजी से कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और उनको देखकर स्वयं श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। और श्री कृष्ण ने देखा कृष्ण भक्त का कीर्तन, वैष्णव का कीर्तन, शंभु का कीर्तन, और कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हो गए। और धीरे धीरे इतने भाव विभोर कि उनका शरीर पिघलने लगा, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में उसको इकट्ठा कर लिया। और फिर तुरंत शिव जी को इशारा किया, बंद कीजिए, नहीं तो कृष्ण पूरे पिघल जाएंगे। तो शिव जी ने फिर बंद किया और कृष्ण फिर अपनी चेतना में आए। तो वो जो तरल रूप ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में लिया था, जिस समय वामन देव ने इस ब्रह्मांड को छेद कर दिया, ब्रह्मांड में अपने नखों से, नखपद जन, तो नख से जैसे उन्होंने छेद कर दिया, तो जो आध्यात्मिक जगत का जल यहां पर आया वो भगवान के चरणों से छूकर आ रहा था, तो उसमें ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल भी मिला दिया। इसीलिए गंगा को भगवान का तरल रूप कहा जाता है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि इस कलयुग में भगवान चार रूपों में प्रकट होते हैं। नाम के रूप में तो हैं ही, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा चार रूपों में प्रकट होते हैं। तो वो कहते हैं कि पहला रूप है श्रीमद् भागवत, जो यहाँ पर वो प्रकट होते हैं। दूसरा रूप है तुलसी, भगवान तुलसी के रूप में प्रकट हुए हैं। और तीसरा रूप वो कहते हैं वैष्णव, भगवान वैष्णवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं कलयुग में। और चौथा रूप गंगा देवी। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने इसको कहा है। तो शिवजी के नृत्य का वर्णन, क्योंकि जब शिवजी नृत्य करते हैं तो उससे भगवान क्यों पिघल गए, क्योंकि शिवजी का नृत्य ही ऐसा है। वृंदावन दास ठाकुर ने ही अपने एक भजन में लिखा है कि जब शिवजी नृत्य करते हैं तो नाम का उनको आनंद आता है, तो शिव वसन न जाने, अपनी चेतना भूल जाते हैं। शिव जी भगवान के नाम में इतनी रुचि है उनको, इसलिए वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं वो। तो ऐसे ये गंगा देवी हैं, इतनी श्रेष्ठ हैं, इस कलयुग में भगवान का वो रूप है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कोई इस सारी पृथ्वी के जो मिट्टी है उसके कणों को गिन ले। हम सब जानते हैं संभव ही नहीं है, लेकिन वहां कहा गया कि ऐसा हो सकता है, प्रायः मान लीजिए। थोड़ा पांव मोड़कर बैठने को बोलो, मंदिर में ऐसे नहीं बैठा जाता। तो हो सकता है कि कोई आगे सारे जो रेत के भी कण हैं उसको गिन ले, लेकिन गंगा के गुणों को नहीं गिन पाएंगे, इतना गुणगान है गंगा का, पद्म पुराण ये कहता है। तो इसीलिए ये जो इनकी कथा है बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। तो अब अवतरण की कथा। तो इस जगत में, इस ब्रह्मांड में वो आई वामन देव के अवतार पर, लेकिन फिर भी ऊपर ही थी, देवलोकों में ही थी गंगा देवी। वैसे ये कहा जाता है कि गंगा और उमा ये दोनों हिमालय की पुत्रियां हैं, और उमा देवी का विवाह हुआ, इतना सोच क्यों रहे आप, शिव जी से। और गंगा देवी को हिमालय से देवताओं ने मांग लिया कि आप हमें दे दीजिए, हम, क्योंकि ये शुद्ध करने वाली हैं तो ये हमारे पास रहें। तो देवलोकों में रहती थी, तो देवलोकों में ही थी। देवलोकों में उनका स्थान है, उनका नाम है मंदाकिनी। हम लोग ये पढ़ते हैं दामोदर लीला में, जब नलकुवर और मणिग्रीव की बात आती है तो वहां वर्णन किया कि नलकुवर मणिग्रीव कैलाश के पास मंदाकिनी में लीला कर रहा, कार्य कर रहे, लीला तो नहीं, जो भी कार्य कर रहे थे, तो मंदाकिनी में थे वो। तो ऊंचे लोकों में मंदाकिनी कहलाती है, लेकिन इस लोक में नहीं थी। तो कैसे आई, इसकी वो कथा कहते हैं जो प्रारंभ करते हैं सगर महाराज से। सगर महाराज की दो पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। तो सगर महाराज, वैसे सगर हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, सगर मतलब गर के साथ, गर सह सगर, तो गर के साथ या विष के साथ जो उत्पन्न हुए। तो सगर महाराज की दो पत्नियां थीं, कोई संतान नहीं थी तपस्या की, तो उनको आशीर्वाद मिला कि आप के दो एक ही संतान होगी और दूसरी को 60,000। तो केशिनी को एक संतान हुई जिसका नाम था असमंजस, बड़ा ही क्रूर पुत्र निकला, नालायक ऐसे कहते हैं ना। और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। तो सगर महाराज एक समय यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ का घोड़ा था, तो यज्ञ करना चाहते थे। और जब भी यज्ञ होता है, जैसे अभी हम लोगों ने सुना 60,000 पुत्र थे, बड़ा आश्चर्य हुआ ना 60,000, मतलब अगर सोचे कि साल में एक या दो को भी दे रहे थे जन्म, तो 30,000 साल तक तो यही चल रहा होगा। बिल्कुल नहीं, 60,000 एक साथ उत्पन्न हुए थे। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, ये तो अभी हमारे हम लोग पीछे पीछे पहुंच गए, इसलिए विचार ही नहीं आता 60,000। दुर्योधन इत्यादि वो भी 100 के 100 एक साथ उत्पन्न हुए थे, टेस्ट ट्यूब बेबीज, है ना। आजकल हम लोग वो बड़क सोचते, हमारा विज्ञान बहुत बढ़ गया, हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे। महाभारत में बना दिया था, और व्यासदेव ने कितनी सरलता से बनाया, कोई लैब की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उनको, देखिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। हुआ ये था कि जब गर्भवती थी गांधारी, तो क्रोध में आकर, द्वेष में आकर उसने अपने गर्भ पर मार लिया था, क्योंकि उसको पता चला कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया, तो द्वेष हो गया उसको कि अरे युधिष्ठिर हो गया, अब वो राजा बनेगा, क्योंकि पहला पुत्र बड़ा पुत्र हो गया, तो द्वेष में अपने को मार लिया। देखिए द्वेष करा, इसीलिए पुत्र जो उत्पन्न हुआ वो भी महाद्वेषी। तो जब संतान का जन्म हुआ, तो जन्म क्या, संतान क्या, एक मांस का टुकड़ा निकला बस। तो बड़ी दुखी हो गई, और उन्होंने व्यासदेव का स्मरण किया और व्यासदेव से कहा, व्यासदेव आए, उन्होंने कहा आपने मुझसे कहा था कि मुझे 100 पुत्र होंगे, 100 क्या, ये तो मांस का टुकड़ा निकला है, एक भी पुत्र नहीं है। व्यासदेव ने कहा मेरी बातें कभी असत्य हो ही नहीं सकती। तब उस समय उन्होंने कहा लाओ, 100 मटकों को लेकर आया गया, 100 मटकों में घी भरा, और उस मांस के टुकड़े को काट काट कर 100 भागों में रख दिया गया, और कहा इसको रखे रहने दो ऐसे कुछ समय, और फिर उनमें से संतान उत्पन्न हुई। बताइए कहाँ है ऐसी टेक्नोलॉजी आज, है ऐसी टेक्नोलॉजी आज कल, तो इतना लैब में सब करने के बाद भी कुछ नहीं होता, फिर कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा विज्ञान बहुत आगे था। तो 60,000 पुत्र उत्पन्न होना मतलब ये नहीं कि वो हर साल कर रहे हैं, 60,000 एक साथ उत्पन्न हुए। तो ऐसे उनके 60,000 पुत्र थे। तो एक समय सगर महाराज यज्ञ कर रहे हैं, और जब इंद्र ने देखा कि यज्ञ हो रहा है, तो इंद्र सोचने लगे कि कहीं अगले इंद्र बनने की इच्छा तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा कहा गया कि अगर कोई 100 यज्ञ कर लेता है तो इंद्र बन जाता है। तो इंद्र इंतजार करता रहता है, थोड़े ज्यादा होने लगे तो रोकना शुरू कर देता है यज्ञ को। तो उन्होंने सोचा शायद ये यज्ञ करके कहीं इंद्र ना बनना चाहे। तो इंद्र ने स्वयं आकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। देखिए इंद्र क्या क्या करते हैं, भगवान के भक्त हैं, क्षमा चाहते हैं, ऊपर से सुन रहे होंगे तो, लेकिन क्या करें, जो लिखा है वो तो बोलना पड़ता है। तो देखिए यज्ञ का घोड़ा खुद आकर चुरा लिया उन्होंने, ताकि ये यज्ञ नहीं करे, यज्ञ पूरा नहीं हो, बताइए। जैसे हम लोग एक बार कुछ भक्त ब्रह्मचारी एक नाटक ड्रामा कर रहे थे कि कौन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो उसमें एक भक्त ने बड़ा अच्छा, उन लोगों ने एक बड़ा अच्छा आइडिया सोचा। उन्होंने कहा कि 2 टीम बनी थी एक ही मंदिर में, तो उनकी कंपटीशन थी कि कौन ज्यादा करेगा। तो ये टीम ज्यादा करना चाहती थी, उस टीम को नहीं होना, तो उन्होंने उस टीम की गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया कि ताकि वो जाए नहीं। ये ड्रामे में हो रहा था, सही में नहीं किया आप लोग। तो हम जब वो देख रहे थे तो हमें यही लग रहा था कि इंद्र भी तो यही करता है, टायर पंक्चर कर, यज्ञ नहीं कर पाया, जा नहीं पाए, तो यज्ञ का घोड़ा ही उठा, मतलब इन्होंने तो पंक्चर किया, तो गाड़ी उठा कर ले गए, पूरा घोड़ा ही उठा कर ले गए। तो इंद्र घोड़े को चुरा कर ले गए, और जब भागे तो उनको घबराहट हुई कि कहां जाएंगे, क्या होगा। तो फिर इंद्र के पास मोबाइल नहीं था, ये कच्चा सा, उसको साइलेंट क्यों नहीं रखते हैं? किसका मोबाइल है, प्लीज साइलेंट रखा करिए। घरों में भी जो लोग बैठे अपना अपना मोबाइल साइलेंट रखे, बात नहीं करें क्लास के समय, हाँ नहीं तो वहां पर वो लोग बात करते रहेंगे। तो इंद्र घोड़े को चुरा कर ले गए, फिर घबरा गए, अब क्या करना चाहिए, और तो वो चले गए नीचे। भगवान कपिल वो साधना में मग्न थे, तो उनके पास चुपचाप बांध कर चले गए, घोड़ा बांध कर भाग गए, मतलब कहीं तो रखना है अब घोड़ा। तो सगर महाराज ने अपने 60,000 पुत्रों को बोला, जाओ पूरी पृथ्वी ढूंढो कहाँ है, घोड़ा ढूंढ के लाओ। तो सब फैल गए, सारी पृथ्वी छान मारी, घोड़ा मिला नहीं, क्योंकि घोड़ा था ही नहीं पृथ्वी पर। तो वापस आ गए वो लोग। तो सगर महाराज खुद जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ की दीक्षा ली, तो उठ तो अलग अलग प्रकार की दीक्षा होती है, तो वो हिल नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि देखा, बोले पूरी पृथ्वी छान मारी कहीं नहीं है, तो बोले पृथ्वी के नीचे चले जाओ, लेकिन ढूंढो कहीं पर भी। तो ये पृथ्वी के नीचे ले गए थे घोड़े को, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी खोद डाली। कहा जाता है कि उसी से सागर बन गया, सागर के पुत्रों ने इतना खोद दिया। तो पृथ्वी के नीचे चले गए, और नीचे जब पहुंचे तो वहां भगवान कपिल ध्यान कर रहे हैं, और घोड़ा बंधा हुआ पड़ा था। तो उन्होंने देखा, अच्छा यही है चोर, यही लेकर आया, और अब बड़ा ध्यान कर रहा है। ऐसा होता है ना कभी कभी, कोई और ध्यान कर रहा है वो आ जाते हैं, तो कहते यही यही इसी ने सब किया। एक और कहानी है ऐसे एक ऋषि की, कि वो ऐसे बैठे थे ध्यान मग्न, वो आया, उसने चोर का रख दिया, फिर उसको उठा के ले गए थे, मांडुक्य ऋषि आए थे, फिर उनको चढ़ा दिया था सूली पर, तो बाद में फिर उनको शाप मिला यमराज को। तो वो घोड़ा वहां बंधा था, तो वो लोग हंगामा करने लगे, 60,000 पुत्र, यही है यही है यही है चोर। तो उन्होंने आंखें खोली, और केवल आंखें खोली उनको देखा, 60 के 60,000 राख हो गए एक सेकंड में। उन्होंने क्रोध भी नहीं किया था, ये नहीं कि उन्होंने क्रोध में जलाकर राख कर दिया, बस उन्होंने देखा, और ये लोग क्योंकि विरोध कर रहे थे, समाप्त। अब उसके बाद जब वो आए नहीं वापस, सगर महाराज इंतजार कर रहे हैं, तो उनका जो अगला पुत्र था असमंजस, वो तो बड़ा क्रूर था, या उसको निकाल दिया था घर से, नालायक पुत्र था, लेकिन उनका पुत्र था अंशुमन, बहुत अच्छा लड़का था। तो अंशुमन से उन्होंने कहा कि तुम जाओ, बड़ा प्रतापी राजा बना वो आगे चलकर, तो तुम जाओ। तो फिर अंशुमन गए, अंशुमन बड़े सौम्य बड़े सभ्य, तो वो आए करते करते उस स्थान पर आए, और देखा कि कुछ है ही नहीं, राख का ढेर लगा, हड्डियों का ढेर लगा। तो बताया, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो अब क्या करें। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान कपिल से ही, कि आप ही कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि गंगा जल अगर इन पर छिड़कोगे तब इनका उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब आए तो पता चला गंगा वो कहाँ है, वो तो स्वर्ग में है, नीचे है ही नहीं, तो पानी कहाँ से आए। तो सगर महाराज को पता चला, तो सगर महाराज ने अपना सारा राज्य उनको सौंप दिया अंशुमन को, कि तुम राज्य करो, मैं तपस्या करता हूं जाकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। तो सगर महाराज चले गए, और उन्होंने कड़ी तपस्या की, लेकिन पृथ्वी पर गंगा आई नहीं, और सगर महाराज ने अपना देह त्याग दिया। जब अंशुमन को पता चला तो वो फिर चले गए तपस्या करने के लिए, उन्होंने तपस्या की, गंगा देवी आई नहीं। फिर उनके पुत्र दिलीप महाराज ने तपस्या की, गंगा देवी आई नहीं। और फिर उनके पुत्र भगीरथ, उन्होंने तपस्या की, और उनकी देखी कितनी जनरेशन लगी गंगा जी को प्रसन्न होने में। हम लोग तो आज गंगा में जाके आराम से स्नान करके आ जाते हैं, लेकिन वो लोग कितनी तपस्या किया उन्होंने, तब हमें मिला है ये। इससे एक बहुत अच्छी चीज और हमें स्मरण आती है, कि हमें जो सुविधाएं मिलती हैं भक्ति में, उन सुविधाओं का उपयोग करते समय हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके कारण हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। आज हमारा आंदोलन बहुत फैला हुआ है, लेकिन हमें कभी उन लोगों के प्रति कृतज्ञता को नहीं त्यागना चाहिए जिन्होंने आरंभ में, इस आंदोलन के आरंभ में बड़ी मेहनत करके इस आंदोलन को चलाया। आज हम लोग दोपहर में देख रहे थे ना प्रभुपाद जी के वीडियो में, कि किस तरह मॉन्ट्रियल टेम्पल का रेंट देने के लिए पैसा नहीं था, तो वो भक्त, हमें नाम ध्यान नहीं किनका उस समय नाम था, तो वो हाँ हाँ, तो वो चले गए और एयरपोर्ट पर जाकर उन्होंने लोगों से भिक्षा मांगी कि दीजिए दीजिए, और फिर $200-300 जो भी मिला वो लाकर उन्होंने उस समय दिया। और 2-3 साल 4 साल बाद प्रभुपाद ने तक उस उनको कहा, 4 साल बाद उन्होंने कहा कि मुझे याद है तुमने मॉन्ट्रियल टेम्पल को बचाने में मदद की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज कि हम उन सबको भूले नहीं कि उन सब ने कितना कष्ट लिया है हमें ये सुविधा देने के लिए, किस लिए हम भक्ति कर सके, इसलिए नहीं कि हम आराम से रह सके इन सुविधाओं का भोग करके। तो कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग इतनी कष्ट लेकर मेहनत लेकर सुविधा, तो दो चीज इससे हमें याद रखनी है। पहली चीज कि हम हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहें जिन्होंने सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, ये आंदोलन, ये संस्था, या फिर ये जो भक्ति का मार्ग श्रील प्रभुपाद ने प्रारंभ किया, और उस समय पर लोगों ने, कितने सारे भक्तों ने उनकी मदद की, हर एक के प्रति कृतज्ञता रहनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जैसे उन्होंने हमारे लिए सुविधा दी है, हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुविधा बनाकर जाएं, ताकि वे लोग भगवान की भक्ति बड़ी सरलता से कर सकें। ये हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए ये इस प्रसंग में बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि कितने लोगों ने तपस्या की है तब जाकर गंगा देवी तैयार हुई इस पृथ्वी पर आने के लिए। तो अब भगीरथ महाराज की तपस्या से प्रसन्न हुई गंगा देवी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, पृथ्वी पर आऊंगी। भगीरथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि इतनी जनरेशन बाद कम से कम हमारे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार होगा। तो उस समय गंगा देवी ने कहा कि लेकिन जब मैं ऊपर से आऊंगी, स्वर्ग से नीचे गिरूंगी, तो बहुत तेज प्रवाह होगा, पृथ्वी मुझे धारण नहीं कर पाएंगी, तो फिर मैं सीधे नीचे चली जाऊंगी, तो कुछ व्यवस्था करो। तो अब उन्होंने कहा अब क्या, इतनी जनरेशन बाद तो ये तैयार हुए आने के लिए और अब नहीं आ सके, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा शिव जी की तपस्या करो, शिव जी कुछ उपाय देंगे। तो उन्होंने फिर 1 वर्ष तक शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं, आशुतोष मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। वो कथा सुनी है ना कि एक बार एक चोर गया शिव जी के मंदिर में, ढूंढ रहा था इधर उधर कुछ चुराने को मिले, तो जैसे यहाँ ये लगा हुआ है वैसे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप जानते हैं एक मटका होता है हमेशा, उससे दूध नहीं तो पानी, अच्छा मंदिर है तो दूध गिरता है थोड़ा दूध या पानी गिरता रहता है, टपकता रहता है शिव जी के। तो उसने इधर उधर देखा, ऊपर देखा कि सोने का मटका लगा हुआ है जिसमें से दूध टपक रहा है शिवलिंग पर। तो उसने कहा इसको ही चुरा ले, तब चोर है उसको क्या लेना देना कि कहाँ है क्या है। तो फिर वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ स्टूल मिले, कुछ टेबल चेयर मिले, तो इस्कॉन टेम्पल तो नहीं था कि जहाँ पर सारी व्यवस्था हो, हमारे यहाँ तो सब रहता है, स्टूल भी है चेयर भी है, जो चाहिए किसी को उतारना है झूमर तो उतार कर ले जा सकता है। तो उसको कुछ मिला नहीं वहां पर, तो मंदिर में कुछ नहीं था, बड़ी देर ढूंढता रहा, हाथ लगाने का प्रयास किया, हाथ नहीं पहुंचा, तो फिर वो शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया, वही एक चीज मिली तो उसके ऊपर खड़ा हो गया, और उसने ऐसे मटके को पकड़ा था उस कलश को और निकालने ही वाला था, शिव जी प्रकट हो गए। अब बताओ, तो घबरा गया बेचारा। तो शिव जी प्रकट हो गए, शिव जी का बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। चोरा था, उसने कहा मुझसे क्यों प्रसन्न है, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो चोरी करने आया था, कभी भक्ति नहीं की, आपको फूल तक नहीं चढ़ाया, बेल के पत्ते भी नहीं चढ़ाए, तो मैंने क्या किया। शिव जी कहने लगे देखो लोग मेरे मंदिर में आते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई बेल के पत्ते चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तुमने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये शिव जी है हमारे भोले बाबा। आगे भी शिव जी के इस भोलेपन का एक प्रसंग आएगा जहां हम धनुष का वर्णन करेंगे, जब मिथिला पहुंचेंगे, अभी तो हम लोग मिथिला नहीं पहुंचे हैं, तो मिथिला में धनुष का वर्णन करेंगे, तो वहां पर यह प्रसंग फिर से आएगा कि शिव जी कैसे बहुत भोले भाले हैं, उस प्रसंग में भी शिव जी का भोलापन आता है। तो खैर शिव जी आशुतोष हैं, तो 1 वर्ष में ही प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। और फिर उस समय शिव जी से इन्होंने प्रार्थना की कि देखिए गंगा देवी आएंगी तो आप थोड़ा उन कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं है, मैं जटाओं में धारण करूंगा उनको, मतलब ऊपर से गिरेंगी जटाओं में धारण करूंगा मैं, और फिर धीरे से छोड़ देंगे। जटा मैं अपने अपने ऊपर धारण करके धीरे से छोड़ूंगा। तो तैयार हो गए, चलो गंगा देवी से कहा सब रेडी। तो गंगा देवी भी तैयार, शिवजी तैयार। और अब गंगा जब ऊपर से आ रही थी तो उन्होंने शिवजी को देखा तो थोड़ा उनके मन में हंसी मजाक करने की इच्छा हो गई। अब वो तो संबंधित है ना, उनकी बहन के पति हैं तो वो तो मजाक कर सकती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतनी तेज गिरूंगी कि शिवजी को ही नीचे लेके चली जाऊंगी, इतना तेज प्रवाह कर दूंगी अपना। अब शिवजी सर्वज्ञ हैं, शिवजी के गुणों में एक गुण है सर्वज्ञ। शिवजी जान गए, अच्छा ऐसा भाव है, ठीक है मैं देखता हूं, गिरो। तो वो तेजी से आई पृथ्वी पर, बड़ी तेजी से। और शिवजी को करना यह था कि धीरे से अपनी जटाओं में लेकर उनको छोड़ना था, लेकिन वो बड़ी तेजी से आई और उनका भाव यह था कि शिवजी को लेकर चले जाएंगी। तो फिर शिवजी भी कहा अब मैं दिखाता हूं। तो सारी जो गंगा थी उन्होंने अपनी जटाओं में ही धारण कर ली। भगीरथ ने देखा गंगा ऊपर से आई 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 गई, हो गई। क्या हुआ भगीरथ देख रहे रहे पानी की बूंद कहाँ है, वो बोले वो सब शिव जी बोले अब तो गए। तो फिर और उनको तपस्या करनी पड़ेगी, ये क्या हो गया, क्योंकि शिव जी ने तो अपने जटाओं में ले ली और शिव जी बोले बस खत्म अभी। तो ये भगीरथ बेचारे जनरेशन तपस्या की और ये शिव जी और गंगा के आपस के उसमें गंगा गाय। तो फिर आगे कैसे गंगा आई इसका कल वर्णन करेंगे, समय हो गया। तो कल वर्णन करेंगे कि इतना होने के बाद फिर भगीरथ महाराज ने क्या किया कि कैसे गंगा को लाए और फिर कैसे गंगा का अवतरण हुआ, गंगा किस किस क्षेत्र में गई, कितने उनके धाराएं हैं, गंगा 7 धाराओं में बहती हैं। तो ये सारा वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते? यस प्रभु। इंद्र, हाँ जी, ऐसा है कि इंद्र की पोस्ट तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक भगवान नहीं चाहे। अगर कोई यज्ञ कर लेता है 100 यज्ञ तो वो केवल योग्य होता है, उसको मिलता है ऐसा नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई हाईकोर्ट जज बनने का योग्य व्यक्ति है, 50 व्यक्ति योग्य हैं, लेकिन उसमें से बनता कौन है, जिसको अधिकारी चुनते हैं। तो इसीलिए भले ही 10 लोग 50 लोग 100 यज्ञ कर लें लेकिन चुनते भगवान हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बन गया इंद्र को हटाकर। हाँ ये वर्णन काफी जगह है कि इंद्र को हराकर वहां पर, जैसे बलि महाराज ने हरा दिया था इंद्र को भागना पड़ा, ऐसा वर्णन कई जगह पर है। लेकिन केवल यज्ञ कर कर वो बन गए तो ये तो भगवान जब तक चुनकर नहीं बनाते हैं तब तक कोई भी इंद्र बन नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी। साधारणतः भगवान दर्शन नहीं देते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि इंद्र को भगवान जब वो चाहें। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर जब इंद्र को तकलीफ आती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी उनको लेकर क्षीर सागर पे जाते, वहाँ भी जरूरी नहीं कि उनको दर्शन होते, ब्रह्मा जी को केवल भगवान ज्ञान देते हैं। तो इंद्र आदि को जब चाहें दर्शन हो जाते, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये केवल नारद मुनि जैसे भक्तों के लिए है, नारद जब चाहें भगवान दर्शन देते, लेकिन इंद्र चाहें ऐसा नहीं है, पहली चीज। फिर भी भगवान उनके घर में हैं वामन देव के रूप में, तो वो तो उनका एक महत्व है ही। तो फिर ये कैसे है, तो क्योंकि भगवान ने खुद उनको एक व्यवस्थापक के रूप में रखा है। भले उनके हृदय में है, जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला में उनका अहंकार तोड़ा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भगवान से फिर झगड़ा किया, आगे देखते हैं हम लोग। तो भले ही उनके हृदय में अभी तक पूर्ण रूप से पूर्ण शुद्धता नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो मिश्र भक्त हैं, लेकिन क्योंकि भगवान ने उनको एक व्यवस्थापक के रूप में रखा है, तो भगवान उनसे जब 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 समय के लिए, तो भगवान खुद आदान प्रदान कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो जब चाहें स्मरण करें भगवान प्रकट हो जाते, नहीं, लेकिन भगवान जब चाहें तब खुद जा सकते हैं उनके पास, इंद्र के पास, जैसे वामन देव प्रकट हुए उनके भाई के रूप में, और अभी भी उनसे स्वीकार करते हैं भोग इत्यादि, बृहद भागवत में लिखा है, तो वो ठीक है, वो भगवान अपने से कर रहे हैं। लेकिन ये इंद्र का कहना चाहिए कि इंद्र की भक्ति के कारण नहीं है, भगवान स्वयं, क्योंकि उनको चुनकर उन्होंने एक व्यवस्थापक या अच्छी स्थिति पर रखा है, उसके कारण है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हमारी संस्था में भी होता है ना कि कई अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन जो मैनेजर पोस्ट पे आ जाते हैं सन्यासी लोग उनको ज्यादा मिलते हैं, है ना, कि उनको मैनेजमेंट की बातें करनी होती है कि भाई क्या हुआ, मीटिंग्स होती हैं इत्यादि, तो बस उतना ही है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि जो सन्यासियों से मिल रहा है वो बहुत शुद्ध भक्त हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट की दृष्टि से मिलना पड़ता है, वो भी जब वो बुलाते हैं तब, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट में तो जब चाहें बात कर सकते हैं। तो इसी तरह भगवान, क्योंकि उनको चुने हुए हैं और भगवान की इच्छा से भगवान उनके सामने जाते हैं, उनकी इच्छा से वो कभी प्रकट नहीं होते। ठीक है,
वृत्तासुर के केस में तो मतलब अगर मैं सही समझाऊं तो भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने
नहीं, वृत्रासुर के केस में तो देवता जाकर प्रार्थना किए भगवान से बहुत कड़ाई से, फिर भगवान ने उनसे कहा कि तुम जाओ ददीची से बनवाओ, तो ददीची से उन्होंने बनवाकर फिर उसको किया था। तो सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ जाकर बड़ी प्रार्थना की थी। हाँ, कहीं कहीं हो सकता है भगवान प्रकट हुए हो उनकी सारे देवताओं की प्रार्थना से। उसका कारण यह है कि देवता प्रशासक हैं ब्रह्मांड के, और भगवान का कर्तव्य है ब्रह्मांड को, तो जब ब्रह्मांड के सारे प्रशासक आकर कहें तो भगवान को आना पड़ता है, मतलब आते हैं वो। उस समय भी जरूरी नहीं है वो आए, ज्ञान दे देते, जैसे वृत्रासुर के समय उन्होंने कह दिया कि जाओ ददीची के पास जाओ, उनसे हड्डियां ले लो और उससे वज्र बनाओ, तो वो सब देवता फिर उधर चले गए। बलि महाराज के समय भी, जब ये समुद्र मंथन होना था, तो बलि महाराज के समय वो लोग सब आ गए याचना की, बचाइए बचाइए, रक्षा कीजिए, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ संधि करो जाकर, तो भगवान ने उस समय भी उनको किया। तो भगवान को ये इसलिए, क्योंकि ये प्रशासक है ना, तो इनको अगर नहीं करेंगे तो सारी पृथ्वी पर असर होगा, तो इसलिए भगवान को आना पड़ता है, प्रशासक होने का थोड़ा सा लाभ है। मध्वाचार्य जी समझाते हैं कि पांचों पांडव अपने पूर्व जन्म में पांच इंद्र थे अलग अलग, ये मध्वाचार्य जी ने समझाया है। आप गति पूछ रहे हैं उनकी क्या होती है, तुम बता रहे हैं कि क्या गति होती है, मध्वाचार्य जी पहले ही बता चुके हैं कि मतलब उनको इतना उन लोगों ने कर लिया है तो फिर शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, और फिर वो करके भगवान के धाम जाते हैं वापस। यस, माइक पे बोलिए। हमेशा स्मरण कैसे रखें इसको? हाँ, उसके लिए जैसे हम लोग जब सुबह सुबह गुरु पूजा करते हैं श्रील प्रभुपाद के, तो उस समय हमें प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने का अवसर है, और हम लोग दर्शाएं, और जब भी प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता दर्शाएं, तो जैसे भगवान कभी अकेले नहीं होते, हम जानते हैं जब हम कृष्ण कहते हैं तो केवल कृष्ण नहीं है और सब उनके साथ है, तो इसीलिए हमें ये भाव में होना चाहिए कि जब हम प्रभुपाद कहें तो उस समय हमें स्मरण करना चाहिए उन सारे लोगों का जिन्होंने उस समय जब बहुत जरूरत थी, जब आंदोलन में कुछ नहीं था, प्रभुपाद अकेले थे, तब उन्होंने जो मदद की, चाहे वो किसी भी प्रकार से अब हों ना हों या जो भी है, लेकिन उस समय जो उन्होंने किया तो हमें उसके लिए उसी समय कृतज्ञता, तो जहां भी हम प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, प्रभुपाद को धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उसी जगह तुरंत हमें उन लोगों को भी कृतज्ञता करनी चाहिए कि जिन्होंने प्रभुपाद को मदद की। अगर हम प्रभुपाद को प्रेम करते हैं तो हम हर उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे जिसने प्रभुपाद को मदद की, ये प्रेम है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम प्रभुपाद से प्रेम करें और जिन जिन्होंने उनको उस समय पर जब कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास, जब आंदोलन को स्थापित करना था, जब मदद की, तो हम कहें नहीं वो उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, मैं और प्रभु, तो फिर वो कनिष्ठ स्तर हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे समय पर स्मरण करना चाहिए और जब भी अवसर मिले, जैसे आज हम लोग जब हम वो वीडियो देख रहे थे तो हमें यही सब बात याद आ रही थी कि कितना हम लोगों को कृतज्ञ होने की जरूरत है कि उन लोगों ने ऐसे समय में कष्ट सह सह कर कुछ नहीं था तब इतना किया, हम लोग आज सब होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये हमें इसीलिए बार बार उनको कृतज्ञता हमारी प्रकट करनी है। ठीक है, यस प्रभु। राधा कृष्ण क्योंकि जब हम लोग गौड़ीय वैष्णव में विशेष करके हम लोग राधा कुंड को अधिक महत्व देते हैं, इसके कई कारण हैं। पहला कारण, न केवल वो राधा और कृष्ण का तरल रूप है लेकिन उसमें राधा और कृष्ण ने लीलाएं की। जैसे जब राधा और कृष्ण यहाँ पर थे तो उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड में बहुत विशेष उन्होंने लीलाएँ की, वो उनका स्थान था मिलने का इत्यादि, और बहुत, तो हम उसको महत्व इसलिए देते हैं कि वो स्थान है, वो जल है जिसमें उन्होंने स्नान किया, जिसमें, और इसलिए यमुना को भी महत्व देते हैं हम लोग, यमुना को भी जाते, क्योंकि भगवान ने वहाँ राधा रानी ने लीला की। दूसरा कारण, जैसे शास्त्र में आचार्यों ने उसका गुणगान किया भी, जैसे रूप गोस्वामी उसको गुणगान करते हैं कि ये वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, ये सब उससे भी वो श्रेष्ठ है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, यही राधा कुंड और श्याम कुंड गोलोक में भी है, आध्यात्मिक जगत में भी है, तो वहां भी वो इसी रूप में है, राधा कुंड और श्याम कुंड के रूप में, पहले वहां प्रकट हुए थे फिर वो यहाँ आए, तो फिर उस स्थान का महत्व देखते हुए हम इसको महत्व देते हैं। तो ये कुछ कारण है जिससे राधा कुंड हमारे लिए, और फिर स्वयं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के जब राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए थे तो उनके वचन हैं कि जो भी इसमें स्नान करेंगे उनको कृष्ण प्रेम निश्चित प्राप्त होगा, या राधा रानी के ने वचन दिया ऐसे उसमें, तो उस दृष्टि से भी हम लोग उसको महत्व देते हैं। अन्यथा डेफिनेटली गंगा देवी भी उनके चरणों से निकली हुई और चरणामृत के समान है हमारे लिए, तो महत्व उतना ही मिलता है, लेकिन क्योंकि कृष्ण ने उनमें लीलाएं कर ली उस स्थली पे, तो इसलिए हम उसको थोड़ा महत्व, वैसे जैसे हरिद्वार है तो उसको हरि का द्वार माना गया है, मतलब भगवान तक पहुंचने का वो द्वार है हरिद्वार, लेकिन हम लोग वृंदावन को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि भगवान ने यहाँ लीलाएं की, उनकी लीला स्थली है, वहाँ वो चले, वहाँ उन्होंने लीलाएं की, तो इस दृष्टि से उसको महत्व देते हैं। ठीक है, हाँ जी।
भगीरथ जी के जीवन, जैसे भगत भगीरथ जी के साथ हुआ वैसे हमारे जीवन में कई बार होता है, तो उसको हम कैसे समझे,
क्या
तपस्या करते हैं और फिर वो नहीं आते, फिर
आप लोग तपस्या ही नहीं करते हो, फिर भगीरथ से कंपेयर क्यों कर रहे हो? भगीरथ से तुलना करने के पहले तपस्या कीजिए भगीरथ की तरह, तब सोचिए कि हम लोग भी ऐसे होते, हमारे जीवन में भी होता है, हमारे जीवन में तो बिना तपस्या किए कष्ट आ जाते हैं, है ना? आपको क्या कष्ट लाने के लिए तपस्या करने की जरूरत है, वैसे ही आ जाते हैं, तो इसीलिए ये जो है, हाँ, इसका प्रश्न ऐसे ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कष्ट आते हैं, हम बड़ा प्रयास करते हैं भक्ति भी करने का तब भी कष्ट आते हैं, ऐसा कहें तो ठीक है, भगीरथ की तरह थोड़ा तुलना मत कीजिए भगीरथ के साथ, उनकी जो तपस्या थी उससे गंगा देवी प्रसन्न होकर आई, हमारी तपस्या थे तो केवल पसीना निकलता है शरीर का, तो इसलिए तुलना नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कभी कभी कुछ करते हैं तो कैसे हमारे जीवन में हमें भी नहीं सफलता मिलती, तो हमें कैसे लेना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए भगवान पर। अब इसी कथा में हम देखते हैं सगर महाराज को सफलता नहीं मिली और फिर उन्होंने उनके बाद उनके वंशजों ने धैर्य नहीं छोड़ा, तो फिर उसके बाद अंशुमन, उनको सफलता नहीं मिली, दिलीप महाराज सफलता नहीं मिली, भगीरथ को मिली। तो यही दिखला रहा है कि अगर हमारे जीवन में असफलताएं आए भी, हमें सोचना चाहिए कि भगवान सोच रहे हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं, जो चीज़ हम मांग रहे हैं उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए भगवान नहीं दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि भक्ति में हम अच्छी तरह भक्ति करें, कोई बाधाएं नहीं आए हमारी भक्ति में, लेकिन बाधाएं आ जाती तो हमें प्रश्न आता है मन में कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी इच्छाओं से उत्पन्न हो रही हैं बाधाएं। भगवान ने तो बहुत स्पष्ट मार्ग दे रखा है आपको, और अगर भगवान कर भी रहे हैं तो विश्वास रखिए कि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं कि जब वो चीज दें तो आप उसको ग्रहण कर सकें। कभी कभी हम जो चीज भगवान से मांगते हैं हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। आज हम भगवान से शुद्ध भक्ति मांग रहे हैं, क्या हम तैयार हैं शुद्ध भक्ति ग्रहण करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो भगवान हमें तैयार करते हैं पहले, तैयार हो जाओ फिर क्यों नहीं देंगे, भगवान निश्चित देंगे, जो योग्य व्यक्ति है उसको देंगे। तो जब हमारे जीवन में कष्ट आए, पहला भाव हमारा ये होना चाहिए भगवान की कृपा है जो आता नहीं है। पहला भाव ये होना चाहिए कि भगवान की कृपा है, भगवान मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, भले मैं नहीं समझ पा रहा हूं लेकिन भगवान समझाना चाहते हैं। और अगर भगवान नहीं चाहते हैं कि मुझे मिले तो दुनिया की कोई ताकत मुझे ये नहीं दे सकती, और अगर भगवान चाहते हैं कि ये मुझे मिले तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अगर ये विश्वास हमारे अंदर है तब फिर हम किसी भी बाधा को सरलता से पार कर सकते। तो पहली चीज, भगवान जो करते हैं हमारे जीवन में अच्छा करते हैं, इसका हमें विश्वास होना चाहिए। फिर भगवान जो हमको नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अभी तैयार नहीं हैं, भगवान हमें तैयार कर रहे हैं, और शायद भगवान जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे भगवान चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि लोग मेरे पास विश मांगने के लिए आते हैं भौतिक इच्छाओं को लेकर, तो वो तो मूर्ख है, मैं थोड़ी मूर्ख हूं जो उनको दे दूंगा। तो भगवान देते नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे लिए विश के समान होगा। ठीक है,
हाँ जी। समर्पण ज्ञान पूर्ण होना चाहिए या भावपूर्ण?
समर्पण ज्ञान पूर्ण होना चाहिए या भावपूर्ण? हमने वर्णन किया कि समर्पण हमारा ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के आधार पर किया गया समर्पण ये पूर्ण समर्पण होता है। जानकर कि क्या कौन है भगवान, हम किनको समर्पण कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, यही एक मार्ग है, तो तब समर्पण जब करते हैं तो पूर्ण होता है। भावुक होकर या भावनाओं के स्तर पर जब करते हैं समर्पण तो वो फिर बदला जा सकता है, क्योंकि ज्ञान ये एक नींव की तरह है। जब तक हमारी इमारत में नींव मजबूत नहीं होगी तब तक इमारत टिकेगी नहीं। इसीलिए जो इमारत बनानी चाहिए, बिल्डिंग बनानी चाहिए, बाइबल में भी लिखा है कि अगर बिल्डिंग बनानी है तो रॉक्स पे बनाइए, सैंड पे नहीं। मतलब हमें अपनी जो बिल्डिंग है वो रेत पे नहीं बनानी चाहिए, मजबूत रॉक को क्या कहते हैं, चट्टान पर बनानी चाहिए। तो ज्ञान चट्टान की तरह है, भावनाएं ये रेत की तरह है। तो हमारी बिल्डिंग अगर ज्ञान पर बनेगी तो समर्पण हमारा पूर्ण होगा। इसीलिए ज्ञान पर आधारित समर्पण चाहिए। यही कारण है भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन को नहीं कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, पूरा ज्ञान देने के बाद कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि अब जो समर्पण होगा वो पूर्ण समर्पण होगा। इसीलिए ज्ञान के आधार पर समर्पण होना चाहिए। ठीक है, कितने और प्रश्न हैं? समय हो रहा है काफी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, तीनों के उत्तर जल्दी देते।
जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है?
मनुष्य ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकता है दो तरीके से। एक तो जब आध्यात्मिक जगत से आता है तो ब्रह्मा बनता है, प्रभुपाद इसको लिखते हैं, और दूसरा जब 100 जन्मों में वो वर्णाश्रम धर्म का कड़ाई से पालन कर लेता है तो वो योग्य हो जाता है, बनता नहीं है, योग्य हो जाता है ब्रह्मा के पद के लिए, फिर भगवान उनमें से किसी को चुनकर ब्रह्मा बनाते हैं। यस, दूसरा,
आयुष्मान किसके पुत्र थे, केशी या सुमति?
आयुष्मान, अंशुमन, अंशुमन केशिनी के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री रामचंद्र की, श्रील प्रभु।